निक खुद से बात कर रहा था कि तभी प्रियल बाहर आई। सुबह के 7 बज रहे थे, लेकिन फिर भी सभी थके हुए होने के कारण सो रहे थे। प्रियल वहां से उठकर कंबल उठाकर जाने लगी। कहाँ जा रही हो, निक ने पूछा। अभी तो बाहर सोने जा रही हूँ, लेकिन शाम तक जन्नत बाजार वापस चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, ना बाहर सोने जाने की और ना ही जन्नत बाजार में जाने की, निक ने सख्ती से कहा। आपके कहने से कुछ नहीं होता, वहां ना जाने कितनी लड़कियां फंसी हुई हैं, जो किसी की बहन, बेटी या बीवी भी हो सकती हैं। मेरे इस तरह आने से फुलवा भी कितनी परेशान हो रही होगी। अब तक तो रूपाली और सुनहरी ने मार मार कर बेचारी का बुरा हाल कर दिया होगा। उन्हें तो यही लग रहा होगा कि उसने ही मुझे भगाया होगा, बोलते हुए प्रियल उदास हो गई। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हें लगा कि तुम्हें लेकर आऊंगा तो उसे वहां पर ऐसे ही अकेले छोड़ दूंगा। मैं उसे भी साथ में लेकर आया था और अब वो एक बहुत ही सेफ जगह पर है, सो डोंट वरी। फुलवा के बारे में जानकर प्रियल के चेहरे पर खुशी थी। उसने मुस्कुराते हुए निक की तरफ देखा, लेकिन अगले ही पल फिर से अपना मुंह बनाते हुए सोचा, कंट्रोल प्रियल, इसकी तरफ स्माइल नहीं करनी है। माना कि इसने फुलवा को वहां से निकालकर अच्छा काम किया है, लेकिन इसे ये भी तो नहीं लगना चाहिए कि मैं इससे इम्प्रेस हूँ। क्या सोचने लगी, तुम चाहो तो इसके लिए मुझे हक कर सकती हो, प्रियल को चुप देखकर निक ने कहा। आप सच बोल रहे हो ना, आपने फुलवा को वहां से निकाल लिया ना, प्रियल ने पूछा। निक ने कहा, हाँ, और तुम भी अब जन्नत बाजार जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग देख लेंगे वहां। प्रियल ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा। पता नहीं कुछ लोगों को फ्री की एडवाइस देने का कितना शौक था, चाहे सामने वाला सुन रहा हो या नहीं भी। अब वहां तुम्हारी जान को खतरा है गुड़िया, तुम कुछ दिनों तक छुप कर रहना होगा। जाओ, जाकर सो जाओ और बहस करना बंद करो, मैं सच में बहस के मूड में नहीं हूँ, निक ने कड़े शब्दों में कहा। प्रियल ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बाहर जाने लगी। निक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। प्रियल ने झटके से अपना हाथ अलग कर लिया। निक उसकी इस हरकत से हंसने लगा। बचपना गया नहीं तुम्हारा अभी तक, ये हमारा ही रूम है, फिर बाहर कहाँ जा रही हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये हमारा नहीं आपका रूम है ना, तो रहिए आप अपने कमरे में, मैं किसी और कमरे में जाकर सो जाऊंगी। इस घर में सिर्फ दो ही रूम है और सब लोग यहाँ होने की वजह से रूम तो क्या हॉल में भी अधिक सो रहा है। वैसे तो पास वाला घर भी खाली है, लेकिन वहां भी कोई ना कोई होगा। तुम यहाँ सो जाओ, मैं बाहर चला जाता हूँ, निक ने बताया। बाहर तो अंकित भाई है ना, तो फिर आप कहाँ सोगे। अच्छा, तो तुम आज भी मेरी फिक्र करती हो, बोलते हुए उसने हल्के हाथ से प्रियल के चेहरे से बालों को हटाया और कहा, तो यहीं सो जाता हूँ तुम्हारे पास। प्रियल ने पीछे हटते हुए कहा, बस कुछ ही देर की बात है, फिर मैं चली जाऊंगी, तब तक एडजस्ट कर लीजिए। वो तो वक्त बताएगा कि तुम यहाँ कितनी देर के लिए हो, चलो अब सो जाओ, मैं बाहर हूँ, कहकर निक वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद प्रियल ने कमरा बंद किया और बेड पर आकर लेट गई। उसने सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन निक का ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहा था। वो बार बार उसके बारे में सोच रही थी। कम ऑन, बी स्ट्रांग, अब तक संभाला है ना खुद को, जब पिछले 5 सालों में हिम्मत बनाकर रखी थी तो अब कमजोर नहीं पड़ सकती हो तुम। इनकी वजह से मैंने बहुत कुछ खोया है, मेरी मम्मा की जान गई है इनकी वजह से, अब मैं कभी इन्हें माफ नहीं करूंगी। बस थोड़ी देर की बात है, फिर वापस जन्नत बाजार चली जाऊंगी, बस तब तक अपने इमोशंस पर काबू रखना है और ये याद रखना है कि अब मैं इनसे प्यार नहीं करती। सोचते हुए प्रियल की आंखें भीग गईं। उसने अपने आंसू साफ किए और फिर से सोने की कोशिश करने लगी। सुबह के 11 बज रहे थे, प्रियल को छोड़कर लगभग सारे उठ चुके थे। जिनी और परी सबके लिए खाना बना रही थी, तो रॉन, अंकित और एमा लैपटॉप में काम कर रहे थे। जैन और आइलिया भी उनके पास बैठकर कुछ फाइल्स चेक कर रहे थे। प्रियल उठकर बाहर आई तो देखा सब अपने अपने काम में लगे थे। जिनी ने प्रियल को देखा तो उसके पास आकर कहा, अरे उठ गई तुम, कुछ चाहिए था तो बोल देती, बाहर क्यों आई। प्रियल ने उसकी तरफ देखकर खुशी से कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, अरे वाह, मैं मासी बनने वाली हूँ। अच्छा, हमारा कोई रिश्ता भी है क्या, मुझे तो लगा हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते, तभी एक बार भी नहीं बताया जाने से पहले, जिनी गुस्से में बोली। तुम मुझसे नाराज हो, मैं और मेरे होने वाला बेबी भी, जिनी ने गुस्से में जवाब दिया। परी ने अंदर से चिल्लाते हुए कहा, मैं भी। अंकित, रॉन और एमा भी एक साथ बोले, हम लोग भी, हम भी, जैन और आइलिया ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। जो हुआ था उसमें मेरी गलती थी यार, आप लोग अपने फ्रेंड से तो नाराज नहीं हो, फिर मुझसे क्यों, प्रियल ने बच्चों जैसा मुंह बनाकर पूछा। परी ने जवाब देते हुए कहा, ये किसने कहा तुम्हें, पिछले 5 सालों में जिनी और एमा ने जीजू से बात तक नहीं की, अंकित भाई भी इंडिया आ गए एमा के साथ, बेचारे जीजू ने ये 5 साल कैसे बिताए हैं ये हमसे पूछो, आई बड़ी जीजू की चमची, प्रियल ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा और फिर आगे बोली, हाँ मैं तो बहुत खुश थी जैसे इन 5 सालों में, तुम हमसे बात मत ही करो दी, मम्मा की जाने बाद तुमने हमसे भी सारे रिश्ते तोड़ दिए, हम कुछ नहीं लगते तुम्हारे, प्रांजल ने गुस्से में कहा। प्रियंका जी का नाम सुनकर प्रियल की आंखों में आंसू आ गए। अब तक वो खुद को बहुत स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रियंका जी का नाम आते ही वो रोने लगी। प्रियल को रोते देखकर रॉन ने परी को चुप रहने का इशारा किया। जाओ आराम कर लो, तुम ठीक नहीं लग रही हो, रॉन ने उसके पास आकर सहलाते हुए कहा। प्रियल बिना कुछ बोले अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर दिया। उसे रोते देखकर उन सबके चेहरे उतर गए।
रॉन ने परी की तरफ देखकर बोला, परी अभी शिकायतों का टाइम नहीं है, इन 5 सालों में उसने भी बहुत कुछ सहन किया होगा। हाँ परी, रॉन बिल्कुल सही बोल रहा है, प्रियल खुद अभी ठीक नहीं लग रही। जिनी ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। सॉरी, अब मुझे भी लग रहा है कि मुझे दीदी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, मैं उनके पास जाकर बात करती हूँ। परी प्रियल के कमरे की तरफ बढ़ी, तभी अंकित ने कहा, उसे बाहर बुला लो परी, बहुत दिन अकेले रह लिया, अब जब सबके साथ रहेगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। रुको, मैं लेकर आती हूँ, एमा ने कहा और दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं है, तो वो दरवाजा खोलकर अंदर गई और फिर से डोर बंद कर लिया। उसने देखा कि प्रियल बेड पर बैठकर अभी तक रो रही थी। एमा ने उसके पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम अभी भी रोती ही हो क्या, चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा लो और सबका सामना करो। मुझे भूख नहीं है, मैं शाम तक चली जाऊंगी वापस, आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी वजह से, प्रियल ने धीमी आवाज में कहा। ऐसे कैसे चली जाऊंगी, और एक मिनट, निक यहाँ रूम में नहीं है, निक कहाँ है, एमा ने इधर उधर देखकर हैरानी से कहा। अब तक उन सबको यही लग रहा था कि निक प्रियल के साथ उस रूम में होगा, उसे वहां ना पाकर वो हैरान थी। मुझे नहीं पता, और वो मेरे साथ एक रूम में होंगे, प्रियल ने जवाब दिया, लेकिन हम सबको तो यही लग रहा था कि तुम दोनों साथ होंगे। रुको, मैं कॉल करके पूछती हूँ, कहकर एमा ने निक को कॉल किया, तो उसका फोन उस कमरे में ही बजने लगा। दोनों हैरानी से मोबाइल की तरफ देखने लगी, क्योंकि अब से पहले उसने कभी अपना फोन इस तरह नहीं छोड़ा था। चलो बाहर जाकर अंकित से पूछते हैं, शायद उसे कुछ पता हो, एमा ने कहा।
प्रियल ने उसकी बात पर हामी भरी और एमा के साथ कमरे से बाहर आ गई। उसने बाहर आकर थोड़ी तेज आवाज में कहा, तुम लोगों ने निक को देखा क्या, पता है कि वो कहाँ गया है? नहीं, इनफैक्ट मैंने तो उसे बोला भी था कि एक बार जन्नत बाजार में ना जाए, मैंने सुनहरी को बोला है कि निक US गया हुआ है, अंकित ने बताया। मुझे लगा वो अंदर प्रियल के साथ है, जिनी ने जवाब दिया। रॉन ने पूछा, उसका मोबाइल तो अभी यहीं बज रहा था, फिर वो कहाँ जा सकता है? प्रियल, तुम्हें कुछ पता है कि भाई कहाँ है? आइलिया ने प्रियल से पूछा। प्रियल ने झुंझलाते हुए जवाब दिया, मुझे कैसे पता होगा, कौन सा मुझे सब जगह बताकर जाते हैं? प्रियल की बातों से उसकी नाराजगी साफ झलक रही थी, साथ ही उसे निक पर गुस्सा भी आ रहा था। जिनी ने कहा, अरे किसी काम से क्या होगा, वो कोई बच्चा तो है नहीं जो तुम लोग ऐसे परेशान हो रहे हो। चलो आओ खाना खाते हैं, जीजू का तो तुम लोग जानते ही हो ना, कभी भी गायब हो जाते हैं। परी ने माहौल को सामान्य करने की कोशिश की। उसके कहने पर सभी डाइनिंग टेबल पर खाना लेकर बैठ गए, लेकिन प्रियल का मन अभी भी निक में ही लगा था, वो उसे लेकर बहुत परेशान हो रही थी। जन्नत बाजार के माहौल का जायजा लेने के लिए रॉन और अंकित जन्नत बाजार में गए। वहां पर अभी भी वही गहमागहमी छाई हुई थी। सुनहरी ने जन्नत और फुलवा को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर रखे थे। जब रूपाली अंकित और रॉन को आते देखा तो वो उनकी तरफ गई। रूपाली ने कहा, अरे साहब आप अभी यहाँ पर क्यों आए हो, जानते हो ना कि ताई गुस्सा करेगी बेवजह। अंकित ने कहा, तो अपनी ताई को संभाल कर रख, जब एनजे सर आएंगे और उन्हें इन सब के बारे में पता चलेगा ना, फिर सोच लेना तुम दोनों के क्या हाल करेंगे वो तुम्हारा। तुम लोगों ने वादा किया था कि जन्नत के जाने के बाद भी जन्नत बाजार वैसे ही सचता रहेगा, लेकिन जब से जन्नत गई है यहाँ पर तो मातम सच आ गया है। वो जो भी आदमी है उसके साथ किसी और को भेज दो, मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारी वो जन्नत वापस मिलने वाली है, रॉन ने सुझाव दिया। सुनहरी उसी तरफ आ रही थी, उसने रॉन की बात सुन ली। सुनहरी ने कहा, बात तो ये साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जन्नत की जगह हम किसी और को भेजना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जन्नत को ढूंढना ही छोड़ देंगे, मिलने तो दो उसे, अपने हाथों से जान ना ले ली तो उसकी। सुनहरी को उनका सुझाव पसंद आया और उसने उस आदमी को कॉल करके वहां पर बुलाया जिसने जन्नत को खरीदा था। पहले तो उस आदमी ने किसी और लड़की को ले जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन रॉन और अंकित सेटलमेंट करके उनके साथ में ऑफिसर निधि को भेज दिया। साहब बस आपके कहने पर मैं मान रहा हूँ, उस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई एहसान नहीं कर रहे तुम हम पर, हम तुम्हें पैसे दे रहे हैं, अब चुपचाप इसे लेकर निकल, अंकित ने सख्ती से कहा। उस आदमी के जाने के बाद रॉन बाहर गया और वापस आते वक्त गाड़ी से अपने साथ एक लड़की को लेकर आया। ये मेरी तरफ से तोहफा है आपके लिए, रॉन ने उस लड़की को सुनहरी के हवाले करते हुए कहा। अरे वाह साहब, ये तो बहुत खूबसूरत है, सुनहरी ने उस लड़की के पास आकर कहा। ऑफिसर निधि के जाने के बाद एक नई ऑफिसर को जन्नत बाजार में भेजा गया, जिसे ये बोलकर जन्नत बाजार में एंट्री दिलाई जाती है कि रॉन उसे लंदन से लेकर आया था। रॉन और अंकित जिस तरीके से उस आदमी के साथ सेटलमेंट किया और उसे समझा बुझाकर जन्नत के बजाय निधि की डील करवाई और साथ ही एक नई लड़की को जन्नत बाजार में लाने की वजह से सुनहरी और रूपाली को वापस रॉन और अंकित पर विश्वास होने लगा।